संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में ते वर्धमान महान दिन पितरे हैं। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार जिसमें सुखाधिकार चल रहा है, ज्ञानाधिकार समाप्त हुआ है और सुखाधिकार आरंभ हुआ है, तो ज्ञान और सुख के संदर्भ में जो कॉमन बातें हैं, जो दोनों की एक साथ ही कही जा सकती हैं, दोनों को एक साथ कहने में जिन्हें सुविधा है, वो सब बातें अभी चल रही हैं। अपनी शायद 55-56वीं गाथा चलेगी, इसकी टीका चलानी है। एक दफा गाथा का पद्यानुवाद कम से कम पढ़ लें।
यह मूत तन गत जीव मूत पदार्थ जाने मूत से अवग्रहादिक पूर्वक अर कभी जाने भी नहीं पौकल के स्पर्श रस गंध वर्ण अर शब्दादि को भी इंद्रियां एक साथ देखो ग्रहण कर सकती नहीं।
मूर्त तनगत अमूर्त दिए, मूर्त एक शरीर में रहने वाला अमूर्त एक आत्मा मूर्त पदार्थ को मूर्त इंद्रियों के सहयोग से जानता है। मूर्त अमूर्त मूर्त अमूर्त का चक्कर है ना। आत्मा तो अमूर्त है, ये मूर्त तन में रहता है और मूर्त इंद्रियों के सहयोग से अमूर्त को अमूर्त पदार्थ को जानता है, अवग्रहादि पूर्वक जानता है और कभी जानता भी नहीं है और कभी जाने भी नहीं। जैसे आचार्य की टीका में ये भी कहा है कि कभी अवग्रह ही तक होके रह जाता है, कभी यही तक होके रह जाता है, उसकी जैसी योग्यता हो, जैसे जिस ज्ञेय को उस ज्ञान में जानने की योग्यता है, तो जैसे अनादिकाल से नक्की है कि इस ज्ञान का ये पदार्थ बनेगा, तो ये भी नक्की है कि वह अवग्रह तक बनेगा और उसके आगे वो नहीं बनेगा, है ना। और पौधगले की जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द हैं, ये पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं ना, भी इंद्रियां इनको ग्रहण तो करती हैं। पांचों इंद्रियां पांचों पदार्थों को ग्रहण कर सकती हैं और कभी भी कर सकती हैं, फिर भी इतनी शर्त है कि जब एक को ग्रहण करेंगी तो दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। और कौए की आंख का उदाहरण देके बताया है कि जिस तरह उपयोग अंदर में एक है ना, कौए की पुतली एक है और आंखें दो हैं, ऐसे अंदर में उपयोग एक है, तो इंद्रियां पांच हैं, तो उनमें बदल बदल करके ये जानता है। यहां पर इंद्रिय ज्ञान हेय है ये बताना उद्देश्य है और अतीन्द्रिय ज्ञान एकमात्र उपादेय है ये बताना उद्देश्य है। इसी संदर्भ में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी कि जब ऐसा प्रकरण आ जाता है कि इंद्रिय ज्ञान को हे कहते हैं, तो ऊपर ऐसा तक लिखते हैं कि अब इंद्रिय ज्ञान की निंदा करते हैं, लिखा ना सबसे ऊपर संस्कृत में पंक्ति देखो, इंद्रिय ज्ञानम हेयम पिण निंदंती, इंद्रिय ज्ञान हे है ऐसा कहकर उसकी निंदा करते। आचार्य खुद ही लिखते हैं और उत्थानिका में लिखते हैं, एक गाथा उनकी इंद्रिय ज्ञान की निंदा की है। इसी संदर्भ में फिर अपन ने कल ये बात की थी कि एक एक अपेक्षा अलग है, क्योंकि वो परम उपादेय है अतीन्द्रिय ज्ञान, और हमारी संतुष्टि इंद्रिय ज्ञान में ही ना हो जाए, और इसमें ही थोड़ा बहुत ज्यादा होके यद्यपि मुझे नहीं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा तो जानता हूं ना, इस तरह हम अपने को बहुत संतुष्ट होते हैं कि भाई हम अपने अगल बगल में दोनों तरफ देख लिया और यदि हम दोनों से थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो बस पर्याप्त है, फिर अब हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हमको संतुष्टि सी होती है। तो वो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान की सामर्थ्य इतनी कमजोर है, अतीन्द्रिय ज्ञान की अपेक्षा अनंतवा भाग है, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा हो गए तो। कहने नहीं, मेरे 80% नंबर हैं, इसके तो 75 ही हैं, तो क्या तेरे 75 और 80% से क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे केवल ज्ञान तो नहीं हो जाएगा तेरे 80% से तेरे को। तो उसकी निंदा करते हैं। अब निंदा करने से हमारे दिमाग में से वो इंद्रिय ज्ञान इतना ना उतर जाए कि हम उसकी फिर परवाही नहीं करें और उसको पूर्णता हे मान के, नहीं समझे ना, अब स्वाध्याय की क्या जरूरत है और पढ़ने की क्या जरूरत है, पठितव्यम सो मर्तव्यम, ना पठितव्यम सो मर्तव्यम, तो दांत किता के कम कर्तव्यम पढ़ेंगे देवी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे देवी मरेंगे, तो बेकार दांत किटकिट करने से क्या फायदा है, ऐसा बोलते ना। तो ऐसी, क्योंकि हमको जो भी उपलब्धि करनी है वो होनी है, वो इसी बीज रूप से यही काम करेगा उसमें, माने सम्मा दर्शन भी हमें होगा ना, तो जो हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो इसी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से ही करेंगे, ख्याल है ना, उसी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को यहां इंद्रिय ज्ञान कह रहे हैं, ख्याल ना। अच्छा, अब अपने टीका पढ़ते हैं। इंद्रिय ज्ञान में उपलम्भक भी मूर्त है और उपलब्ध भी मूर्त है। कहते इंद्रिय ज्ञान है उसमें उपलम्भक माने उपलब्ध कराने में सहायक, और उपलब्ध माने जिसे हमें समझना है, तो जो समझने में सहायक हैं वे भी मूर्त पदार्थ हैं, और जिसे समझना है वो भी मूर्त पदार्थ है। क्या माने, ये सब मूर्त हैं यहां, देखो इंद्रिय ज्ञान में उपलम्भक माने जानने में सहयोगी इंद्रियां वे भी मूर्त हैं, और उपलब्ध माने जानने में आने वाले पदार्थ वे भी मूर्त हैं, है ना। स्वयं अमूर्त होने पर भी, अमूर्त कौन, आत्मा, स्वयं आत्मा अमूर्त होने पर भी यह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव अंदर अमूर्त है, और वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति जिसकी हो रही है, पंचेंद्रिय आत्मक मूर्ति शरीर को प्राप्त होता हुआ जानने में निमित्त भूत माने उपलम्भक मूर्त शरीर के द्वारा जानने योग स्पर्शादिमान मूर्त पदार्थ, मूर्त वस्तुओं को अवग्रह रूप जानता है, उससे आगे शुद्धि के सद्भावानुसार कदाचित इहाद रूप भी जानता है। इस पंक्ति में वो सब बात आ गई, अवग्रह में तो कदाचित नहीं लगाया, फिर इहाद में कदाचित लगा दिया, और शुद्धि के सद्भाव के अनुसार माने सूक्ष्म ज्ञान जितना होगा जैसा होगा उसके अनुसार। अभी वो अपना विद्यार्थी जो अपन को बता रहा था 10 कर्म, तो वो सब कर्म की तरफ से ही बात कर रहा था, है जी करुणान योग में जितना है वो नियम है कि जो भी कार्य होगा उसमें उस कर्म का उदय नियम से होगा ही होगा, जैसे कि सम्यक दर्शन होगा तो कर्म का क्षय उपशम उपशम रूप जो भी दशा होनी होगी वो होगी, मिथ्यात्व होगा तो मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय गारंटी से होगा ही। ये बहुत जबरदस्त निमित्त निमित्तक संबंध है, और उसी के आधार पर पूरा कर्णान योग खड़ा है। यदि वो नहीं हो गए तो फिर करुणान योग बनते ही नहीं, वो इतना जबरदस्त है कि उसमें अन्वय और वितरेक दोनों व्याप्ति घट जाती है, कैसी मिथ्यात्व कर्म का उदय का अभाव होगा तो मिथ्या दर्शन होगा ही नहीं, और उदय होगा तो गारंटी से होगा ही, और मिथ्या दर्शन होगा तो मिथ्यात्व कर्म का उदय गारंटी से हो गई, दो तरफी गारंटी है, मतलब समझे ना। फिर भी हमारी मुक्ति किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, हमें केवल ज्ञान इसलिए हुआ है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया था, अन्यथा नहीं होता। ऐसी जो हमारी कल्पना है वो हमारे पुरुषार्थ को खंडित करती है कि वो ज्ञान तो अपनी योग्यता से ही हुआ, उसे उसके क्षयोपशम की उपशम की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। क्या वो टोडामल जी ने तो ऐसा लिखा कि भाई वो कर्म का क्षय होगा तभी तो काम होगा, तो फिर कर्म का क्षय कैसे होगा? वो भी इस आत्मा के द्वारा अनुभव करेगा, उसी से होगा ना, तो उसके लिए तुझे अलग से पुरुषार्थ नहीं करना है। तू तो अपने आत्मा को ही समझने का पुरुषार्थ कर, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी आत्मा को समझने की, आत्मा समझ में आए और उसमें कर्म की जो दशा होनी होगी उसके निमित्त से, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसकी तरफ तुझे देखने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। ये बात ऐसी है कि अपन साइकिल चलाते हैं तो साइकिल अपन अपने पैरों से ही टेंडर को घुमाएंगे और हाथ से ही हैंडल को मोड़ेंगे, ये नक्की है बिल्कुल, उसके बिना ये काम नहीं होगा, है ना। फिर भी साइकिल चलाने वाला हमें सिखाता है कि तुझे पैडल नहीं देखने हैं और तुझे हैंडल भी नहीं देखना, पैडल चलाने हैं उसके बिना साइकिल नहीं चलेगी, पैदल चलेंगे तो साइकिल गारंटी से चलेगी, अन्वय वितरेक दोनों है, है? और जहां को जाना है वहां को तू मोड़ेगा तो वहीं को जाएगी, ये भी नक्की पक्की है। फिर भी तुझे अपनी निगाह सड़क पे रखनी है, ना हैंडल पे रखनी है ना पैदल पे। जब पहली पहली जगह अपन जब साइकिल सीखते हैं तो अपने सबसे पहले पैर पैडल अपन चलाते हैं ना, तो वहां अपनी निगाह जाती है, वहां देखते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। और फिर जब बहुत समझा समझा के उपदेश दे दे के डंडा मार मार के वहां से हटाएं तो हैंडल देखने लगते हैं, है? हाथ और पैर तो बिना देखे चलने चाहिए, जहां को मुड़ना है वो ऑटोमेटिक मुड़ना चाहिए, हमें सोच सोच के नहीं मुड़ना पड़े, देखना नहीं पड़े। हम तो सामने सड़क देखें कि सड़क पर तो कोई नहीं आ रहा, उसे हमारी साइकिल टकरा तो नहीं जाएगी, है? मैंने पैदल पैदल चलाया और पहिया नहीं चला तो देख लू ना वो तो चलेगा ही, हैंडल घूमेगा ही, तुझे उसकी फिक्र रंच मात्र भी नहीं करना है, यानी उस पर उपयोग नहीं रखना है और फिर भी वो चलाना है, और उसका कर्ता तू ही कहलाएगा कि तू ही ने चलाया पैडल, तू ही ने हैंडल पकड़ा, लेकिन उपयोग बाहर रखना है, माने उपयोग माने दृष्टि, निगाह, निगाह सड़क पे रखनी है तो दृष्टि, तो दृष्टि आत्मा पे रखनी है, दृष्टि कर्म पे नहीं रखनी है। वो तो कारमान बैगनाए हैं, स्पर्धक हैं, जो भी जितने भी होंगे और उनमें संख्या परमाणुओं की कितनी है, अब उनको सुन सुन के अपना आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित होते हैं अपन। तो पांडे राजमल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि तुझे केवल ज्ञान की महिमा जानना हो तो इधर टोडामल जी से आकर मिलो, ऐसा लिखा, केवल ज्ञान की महिमा जानना हो तो। और ये लिखा कि मुझे हम उनके पास गए और हमने टोडामल जी से प्रश्न किए तो वे हर प्रश्न का उत्तर एक गोमरसार नामक ग्रंथ की साक्षी से देते भाई, देते गए अकेले गुम, हर गोमरसार में एक दूसरे समय सार के नाम नहीं किया, गोमरसार की तरफ से देते। तो उनने हमने उनके ज्ञान की महिमा जानी और केवल ज्ञान की महिमा जानी। ये केवल ज्ञान की महिमा कैसे जान ली? उन्होंने केवल ज्ञान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, किन्ने टोडरमल जी ने। तो ये क्यों लिखते हैं? जब मैंने पीएचडी की थी तब मैं पढ़ता था, मुझे लगता है ये केवल ज्ञान की क्यों लिखते हैं? केवल ज्ञान की तो टोडरमल जी ने कुछ कहा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि करुणा नहीं हो केवल ज्ञान गम है, ये केवल ज्ञानी की जानी हुई बातें हैं जो शास्त्र में लिखी हैं और जो टोडरमल जी हमें बता रहे हैं। तो तुमको यहाँ आओगे तो टोडरमल जी गोमर्सार ग्रंथ के आधार से ऐसी इतनी बातें बताएंगे कि जो सिर्फ केवल ज्ञान में जानी जा सकती हैं और कहीं जानने में नहीं आ सकती हैं। तो तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा आएगी। कैसे केवल ज्ञान की महिमा आएगी? कि कितने परमाणु सिद्धानंतम भागम अभव सिद्धाश्च अनंत गुण मेवे वे भी अनंत देवी अनंत देवी अनंत कितने अनंत 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 प्रकार के हैं। तो जब उसे खोल खोल के बताते हैं ना तो उतनी उतना चित्त में आश्चर्य जैसा होता जाता है, हैं? लेकिन अध्यात्म कहता है इतना पर्याप्त है कि जा योगे कर्म के उदयाधिक जैसे होना होंगे समय समय पर होंगे। जो बोलते हैं कर्म के अभाव से सम्यक दर्शन होगा, मिथ्यात कर्म के अभाव से। तो कहें क्या उदय उपशम क्षयोपम या क्षय रूप अभाव, तीनों के नाम दे देते। वो अभाव क्षयोपम रूप भी हो तो भी चलेगा, उपशम रूप हो तो भी चलेगा, क्षय रूप हो तो भी चलेगा, कोई भी तरह का अभाव होगा। अब उसकी डिटेल से जब बात करेंगे तब बताएंगे। अभी तो इतना समझ लो तुम कि कर्म का निमित्त निमित्त जो संबंध है वो अपनी जगह 100% पक्का और सच्चा है, लेकिन तुझे उसकी तरफ निगाह नहीं रखना है। यदि तूने पैडल की तरफ निगाह रखा और साइकिल के हैंडल को देखा तो तू कहीं ना कहीं एक्सीडेंट किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि सड़क पे जो सामने आदमी है उसे तो देख नहीं रहा और गाड़ी दौड़ रही है तो किसी न किसी से टकराएगी ना वो तो है। इसलिए तेरे को निगाह वहां नहीं रखना है, तेरे को निगाह यहां रखना है अपने भगवान आत्मा पर, है? तो फिर उसका क्या होगा? कर्म का हो जाएगा, अपने आप समय पर हो जाएगा। जो अपन ने खाना खाया है वो कौन पचाएगा? अपन ही पचाएंगे ना। तुम्हारा तुम पचाओगे, मेरा मैं पचाऊंगा, एक दूसरे का हम सहयोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं? लेकिन तेरे को वो खाना पचाने के लिए जो भी पुरुषार्थ होना है करना, तो क्या बोले वहां उपयोग नहीं रखना है। तुझे ज्ञान का भी गेय नहीं बनाना है। अब पुरुषार्थ करने की बात तो कितनी दूर रह गई? क्यों? तब 8 घंटे में पच जाएगा वो ऑटोमेटिक, जो काम होना है वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। फिर उसी को ये कहेंगे तुमने पचाया, ये थोड़ी कहेंगे तुम्हारा खाना हमने पचाया। यानी तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है और उसके पक्के कर्ता धरता तुम ही हो। ये तो बहुत अन्याय है। तब कर्ता धरता हम ही होंगे तो उसका फल भी तो हमें कोई भोगना पड़ेगा ना, मैंने बुरा फल क्यों क्या भोगना पड़ेगा। लेकिन उपयोग वहां नहीं रखना। तुम यदि 24 घंटे देखते रहे तो मेरा खाना कहाँ पहुंच गया, अब पच रहा कि नहीं पच रहा, इसकी जांच ऐसे करते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। वहां तो कुछ पता पड़ता नहीं है, है ना? माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तो क्या तुम माँ को करना है क्या डॉक्टर को करना है? दोनों ज्ञाता रिश्ता ही है ना, समझ? हर महीने बुलाते हैं तो बुलाते जाके देखते हैं डॉक्टर, देखते फिर यही तो कहे देख लिया भाई, जान लिया भाई, खत्म, ठीक है, फिर तो इतने करते ना। मतलब उन्हें ज्ञाता रिश्ता रहना है, वो सब अपने आप बढ़ेगा और पूरा परिपक्व होगा और हो करके समय पर यथा समय उसका जन्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लौकिक मामले में हम इतने समझदार हैं कि वहां कोई माथा नहीं मारती, कोई धर्म के मामले में नहीं है। कर्म में यदि जानो तो और नहीं जानो तो क्या फर्क पड़ता है? बम्बई में एक डॉक्टर नहीं है, उसका नाम है, क्या नाम, हिंदुजा, इंदिरा हिंदुजा नाम है, वो डॉक्टर नहीं है जिसने विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था। माने विश्व में, अकेले हिंदुस्तान में नहीं, इतनी बड़ी डॉक्टर, और वो सिंधी है, वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाती है, वो अपने ऑपरेशन वगैरह करती, वो भाग्य से उसे अध्यात्म का रंग लग गया तो अपने प्रवचन में आती है, वो एक प्रवचन अपना भी नहीं छोड़ती है, अपने घर पे भी सब किताबें रखती है, कैसेट रखे तो स्वाध्याय करती है, ये सब करते हैं। एक तरह मुझे उन लोगों ने 10-20 डॉक्टरों ने मिलकर उसी के घर पर मेरा भोजन रखा और तत्व चर्चा रखी, और वो फिर खाना खाया फिर बैठ गए बातचीत करने के लिए सब, तो बार बार ये सब बात वो कह रही थी। तो मैं बता रहा था कि ये भी तुमको क्या करना है, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत वो सब काम होगा, कहीं उस कर्म का क्षेत्र नहीं हुआ तो फला नहीं हुआ तो सब जगह अपन समझते ना, मैं सब व्यवस्था देख लूं, यहाँ हो रहा कि नहीं हो रहा, यहाँ से आ रहा नहीं बरात, तो वहां से आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ से हम घर वाले तैयार स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। भाई तुम्हारी ड्यूटी बरात लाने की है, 10 बजे लानी थी ना, उधर संभालो तुम, यहाँ पर हम 10 बजे के पहले स्वागत के लिए पूरे तैयार खड़े रहेंगे, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, और हम तुम्हारी बरात की चिंता नहीं करेंगे, तो ही काम सही हो सकता है ना, हम उसकी चिंता करें, भी हमारी करें, करें कोई कुछ नहीं है? हम कर्म की चिंता करें, कर्म क्या करे कैसे करे, यदि कर्म कर्म की जगह करेगा है, और तुम अपना अपने अपनी जगह करो, आत्मा का जो काम है उसमें तो उतना करो, ये सीधा सच्चा मार्ग है ना, हमें उसमें माथा मारने की कहां जरूरत है। इसलिए वे कहते हैं कि तुमको वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि भाई हमको इतना तो पता होगा ना कि इसमें अनंतानंदी का भी साथ में छह उपसम होना चाहिए मिथ्यात्व के साथ, क्यों तो नहीं पता होगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा तुम्हें, तो होगा या नहीं होगा। अरे जिन जिन का होना नक्की होगा वो सब होगा, तो बहुत समझाया मैंने लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा कि तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था क्या, तुम्हें ये बिल्कुल पता है कि माँ के पेट में बच्चा होता है तो 1 महीने का होता है जब कैसा होता है, 2 महीने का होता है जब कैसा होता है, 3 महीने का होता है जब कैसा होता है, कि आंखें कब बन जाती हैं, खुल जाती हैं, कब हाथ पैर कब विकसित हो जाते हैं, एक एक अंग नियम है, 4 महीने में ये विकसित हो जाएंगे, 3 महीने में ये हो जाएगा, 2 महीने में ये हो जाएगा, सब मालूम है ना। अरे एक एक महीने की नहीं, एक एक दिन की प्रोग्रेस उन्हें मालूम है, क्या वो ये नहीं देखते कि महीना भर पहले कैसा था अब कैसा, वहां क्या देखते हैं कि 4 महीना में बच्चा को कितना बढ़ जाना चाहिए, वो उतना बड़ा के नहीं, उसकी लंबाई चौड़ाई उतनी हुई के नहीं, उसका वेट उतना हुआ के नहीं, वो सब नाप लेते हैं वो अपने यंत्रों से, कहने नहीं अभी कम हुआ है, विकसित नहीं हो रहा है बच्चा, कोई ना कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसे खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा है, क्या कि ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा वो सब उसको पता है यहां। और मैंने कहा एक शहरिया की लड़की आती है, शहरिया माने शहर वाले नहीं, वो गांव में आदिवासी होते हैं ना, उनको शहरिया बोलते हैं, समझ आए ना, वो बिना पढ़ी लिखी बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर 20 वर्ष की कन्या है, उसे कुछ मालूम नहीं है, है ना, और वो गर्भवती हो गई, तो वो 9 महीना में एक सुंदर बच्चे को पैदा कर देगी, और आप कितने एक एक दिन की प्रोग्रेस जानती रहो लेकिन इस जन्म में तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वो ब्रह्मचारी है मतलब शादी नहीं की है, क्यों? कि तुम्हारे ज्ञान से क्या होता है? वो तुम जान रही हो, उसका बच्चा कितना बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा, क्या कर रहा, और वो नहीं जान रही, उसे कुछ पता नहीं कितना बढ़ना चाहिए, कम बढ़ रहा कि ज्यादा बढ़ रहा, उसे कुछ पता नहीं है ना। वो उसके लक्ष्य से कुछ नहीं कर रही, अपना सही सच्चा जीवन बिता रही है, दो रोटियां खाती थी वो खा लेती है, शुद्ध सात्विक तरीके से रहती है, है ना। तो ऐसे ही ये कर्म में किस वक्त कहां कितना क्या हो रहा है, ये डॉक्टर को जानने दो, है ना। तुम यदि अपने आत्मा में अंदर में चले गए तो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। माने उसकी एक प्रकृति का नाम हम भूल गए तो उस प्रकृति का फिर उपशम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तो जिसकी जितने जहां जैसी उपशमादिक अवस्था होनी है वो होगी ही होगी, ये पक्की गारंटी है, तुझे उसका विकल्प करने की जरूरत नहीं है। देखो स्वयं अमूर्त होने पर भी इंद्रिय ज्ञान वाला जीव पंचेन्द्रियात्मक मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ जानने में निमित्त भूत उपलम्बक मूर्त शरीर के द्वारा जानने योग्य स्पर्शादिमान मूर्त वस्तुओं को अवग्रह रूप जानता है। उससे आगे शुद्धि के सद्भावनानुसार कदाचित इहादिक रूप जानता भी है और कदाचित शुद्धि के अभाव में नहीं जानता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान पर रूप है। ये चार लाइनें स्पष्ट हो गई? हो गई? बता सकते हो? देख के तो बता ही सकते हो, उसमें तो कोई शंका की मुझे नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात है कि आप एक दफे अच्छी तरह देख लो, दो मिनट उपयोग लगा के, तो तुम वैसे भी बता सकते हो। इतना कठिन नहीं है, वो बात स्पष्ट है। कोई विशेषण एक आध बीच में छूट जाए तो छूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। मुद्दे की बात समझ में आना चाहिए कि मूर्त ज्ञान वाला जो मूर्त शरीर में रहने वाला आत्मा मूर्त पदार्थ को मूर्त इंद्रियों के सहयोग से जानता है, ताल में आए ना, और अवग्रहादि रूप जानता है, और कभी शुद्धि के न हो उतनी तो नहीं भी जानता है, शुद्धि के अनुसार जानता है और नहीं भी जानता, इतनी सी बात कही हो गई ना। इस पर श्रद्धा एक पैरा क्लियर हो गया। अब दूसरा ये परोक्ष ज्ञान की बात बताई। परोक्ष ज्ञान परमार्थता अज्ञान में गिना जाने योग्य है। अब ये अमृत चंद्राचार्य की विशेषता है। ये जो परोक्ष ज्ञान है ना, इस ज्ञान को जो बताया ना ऊपर, वो जानता है अवग्रादि रूप, ये परोक्ष ज्ञान है। तो कहते परोक्ष ज्ञान को ज्ञान में गिने के अज्ञान में गिना। शायद सुबह के प्रचन में आ रहा था कि वो हमने चश्मा लगा के जाना, तो मेरा ये देखना है, मैं देखता हूं कि मैं अंधा हूं, ऐसा पूछना है था ना, क्या क्या मैं चश्मा लगा के देख सकता हूं, बिना चश्मा के नहीं देख सकता, तो मैं अंधा हूं कि मुझे दिखता, क्या माने? माने कोई एक शर्त लग जाए तो उससे कोई आदमी अंधा नहीं हो जाता है? आप आंख के बिना नहीं देख सकते, मैं आंख हो चश्मा के बिना नहीं देख सकता, और एक तीसरा उजेले के बिना नहीं देख सकता। माने शर्तें लग गई ताय जितनी, लेकिन वो देखने के भेद हैं, नहीं देखने के भेद नहीं है, ख्याल में आया ना। अब ये वो कहते हैं ज्ञान ही मानना चाहिए ना, परोक्ष ज्ञान को माना भी है शास्त्रों में। अब ये अध्यात्म के जोर में कह रहे हैं कि उसे अज्ञान में गिने जाने योग्य है। अब ये अटपटी बात है, देखो लिखा ना, परोक्ष ज्ञान परमार्थता अज्ञान में गिने जाने योग्य है, लिखा ना क्लियर। कहां पंडित लिखा? तो ये कथनचित है क्या? सर्वथा अज्ञान में गिने जाने योग्य है, हैं? क्या है कथनचित है? कहां लिखा? हाँ परमार्थता लिखा ना, तो परमार्थता माने निश्चय नैसे, आगे समझ रहे मैंने व्यवहार से नहीं, आप समझ गए ना, वो परमार्थता लगा तो अब चार्ज इतनी ही लगा दो, हे यही है अज्ञान में ही गिना जाने योग्य है, फिर कोई घबराहट की बात नहीं है, है ना। परमार्थ से फिर जो भी कहो वो कहो तुम। अब हम ये भूल जाते हैं कि ये परमार्थ लगा के कह रहे हैं, और हम समझे बिल्कुल ने क्लियर कहा था कि हे ही है बिल्कुल छोड़ने लायक है, वो तो बिल्कुल है। अब ये भूल जाते हैं कि परमार्थ लगा है, और नहीं लगा होता शांति जी तो संबंध फिर कहते तो भी हमारे यहाँ तो लगा ही है, हम स्यादवादी हैं तो हमारे यहाँ तो नहीं भी लगा हो तो लगा ही है। कभी कभी ऐसा इसलिए हो जाता है कि छंद में जगह नहीं होती है, हम निश्चय न परमार्थता कुछ लगा दे में ही खलू चल बच्चा भाई तो लगा ही देते हैं, हैं? उनको ये उसका में से अर्थ निकाल लेते ना अपन, ही माने निश्चय से खलू माने निश्चय से, ये पूरक शब्द भी हैं, और ये ऐसा वस्तु का स्वरूप भी बताते हैं। पहले बताई थी ना तुम्हें, कविता बनाना सीखने के लिए कोई गया अपने गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने कहा अरे उसमें क्या है, अभी 5 मिनट में सिखाता हूँ कविता बनाना, उसमें क्या है कि बोलो कि जब कुछ नहीं आया समझ में तो चा लिख दो, ही लिख दो, खलू लिख दो, वही लिख दो, कविता बन जाएगी। यानी उनने तो ये कहा कि कविता तो तुम बनाओगे लेकिन वहां पर छंद नहीं बन रहा हो, एक अक्षर कम पड़ रहा हो, एक अक्षर ज्यादा पड़ रहा हो, तो ये पूरक के शब्द हैं, ये पूरक हैं, इनको बीच में लगा दो, इनका कुछ अर्थ नहीं होता है, इससे भाव बिगड़ेगा नहीं और कविता बन जाएगी। उसने कहा अच्छा, तो बैठा तो कुछ समझ में नहीं आया तो उसने चा लिख दिया, फिर बहुत सोचा तो फिर कुछ समझ में नहीं आया तो ही लिख दिया, फिर सोचा फिर समझ में नहीं आया तो खलू लिख दिया, फिर सोचा फिर समझ में नहीं आया तो फिर बई लिख दिया, फिर सोचा फिर समझ में नहीं आया तो चा लिख दिया। इस तरह बहुत बढ़िया कविता बन गई, चही खल बई चही खल बई चही खल बई चही। अरे भाई ये तो पूरक शब्द हैं, अकेले इनसे थोड़ी कविता बनती है, समझ में आए ना। जो कविता तुम बनाना जानते हो, हम तो यही समझे कि तुमसे बना ले तुमसे अच्छी नहीं बनती होगी, तो हमने ऐसी तरकीब बताई, ऐसी नहीं कि तुम बिल्कुल ही नहीं जानते हो, तो चार्ज कोई इन शब्दों से बना लेगा। जो परोक्ष ज्ञान परमार्थता अज्ञान में गिने जाने योग्य है, क्योंकि आत्मा का चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध होने पर भी, आत्मा के अनादि से चैतन्य सामान्य तो है ही ना, अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमो ग्रंथि के द्वारा आवृत आत्मा पदार्थों को स्वयं जानने में असमर्थ होने से प्राप्त और अप्राप्त पर पदार्थ, प्राप्त माने जाना हुआ, अप्राप्त माने नहीं जाना हुआ, पर पदार्थ रूप सामग्री को खोजने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल व अस्थिर होता हुआ, अनंत शक्ति से च्युत होने से घबराया हुआ, महामोह मल्ल के जीवित होने से पर को परिणमित करने में अभिप्राय से पद पद पर ठगाया जाता है, अतः परोक्ष ज्ञान ही है। जिसको परोक्ष ज्ञान है वो कदम कदम पर ठगाया जाता है। क्यों ठगाया जाता है? तो उसमें जितनी कमजोरियां हैं उनसे ये सारी चीजें उनने बताई, वो चंचल चित्त है, अस्थिर हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारी चीजें वहां गिनाई। यही अमृतचंदाचार्य एक जगह इसी प्रवचन सार में लिखते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता है कि ये आत्मा निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों होता, माने खोजने की जरूरत ही नहीं है, जब कार्य होता है तो वहां नियम से निमित्त होता ही है। जो आचार्य बताते हैं ना कि निमित्त जहां होता ही है, जब इतना जितना बताएं तो वो क्या कहता है, देखो गुरुजी ने कहा ना निमित्त होता ही है ना, हाँ होता ही है ना, कहा कि निमित्त के बिना नहीं होगा काम, के हाँ कहा, तो फिर निमित्त तो खोजना पड़ेगा ना। देख कहते हैं कि निमित्त होता ही है, उसमें से खोजना पड़ेगा ये तूने कहां से निकाला। अरे वो क्या समझता है, उसकी आवश्यकता है ही तो मुझे व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। अब वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो व्यवस्थित ही है, होता ही है, माने अब होता है तो खोजने की कहां जरूरत है। दोनों अर्थ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, उसका अर्थ क्या था कि वो चीज गारंटी से होगी ही तो उसे खोजने की कहां जरूरत रही। और वो अर्थ क्या निकाल रहा है, जब जरूरत ही है उसके बिना काम नहीं होगा तो खोजूंगा नहीं तो काम कैसे होगा। तो वो कहते हमारे शब्द का तुम अर्थ ही नहीं समझा, हम क्या कह रहे हैं है? मैं आपसे इतनी एक बस एक उदाहरण है निमित्त के बारे में कि हम सबने और महावीर स्वामी तक, महावीर स्वामी से लेकर हम तक सबने जब हमने ये मनुष्य गति में आए हम तो माँ बाप के बिना तो नहीं आ सकते ना। कोई भी अपने माँ बाप के बिना तो नहीं आया है ना। सबको मनुष्य गति में आने की जो एक ही विधि है ना वो सारी सबके संपन्न हुई है ना और भविष्य में होगी। तो किस किस ने अपने इसके इंतजाम किया था, यानी कोई भी बिना माँ बाप के पैदा नहीं होगा और एक को भी माँ बाप का इंतजाम करने की रंचमात जरूरत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। आप समझ गए ना? तो अत्यंत आवश्यक है ये कहने में हमें उसकी व्यवस्था करनी है, ये कहां से आता है और हम उसमें से ये अर्थ निकाल देते हैं। बल्कि ऐसा अर्थ निकलता है कि वो तो व्यवस्था होती ही है, जब मेरा मान लो कि सोल में स्वर्ग में बैठे भगवान महावीर जी का जीव कहे कि मुझे तीर्थंकर होना है तो तीर्थंकरों के जैसे माँ बाप होते हैं वैसे माँ बाप मुझे नहीं खोजने हैं, वे तो यथा स्थान होंगे ही हैं? क्या होंगे ही, कभी उनके बिना तो तेरा काम होगा ही नहीं, इसमें से निकलती है पराधीनता। और वे होंगे ही, तुझे उसमें कुछ नहीं करना है, तुझे चित्त में विकल्प भी नहीं करना है। और कोई तीर्थंकर ने आज तक किया नहीं, सर्वार सिद्धि में बैठे थे, सोल में स्वर्ग में थे, हैं कोई कहीं थे कोई कहीं थे और सब में उसमें आए। और ऐसे हम तुम भी, हमने तुमने भी किसने क्या किया था, कुछ नहीं किया किसी ने भी। तो ऐसा वो निमित्त तो अनिवार्य भी हो गया और हमें कुछ करना नहीं है उसमें, ये भी हो गया। आचार्य देव को तो तुम्हारे माथे से निमित्त को जुटाने का बोझा उतारना है, निमित्त का निषेध इष्ट नहीं है। समझ में आई ना? तुमने जो अपने माथे पर बोझा ले रखा है वो बोझा उतारना उद्देश्य है। वो तो ये कह रहे कि तुम माथे पर बोझा मत लो, परोक्ष ज्ञान ही है, हो गया, अब आगे चलो। यद्यपि स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं, ये बात माने ठीक है, तो भी वे इंद्रियों द्वारा एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते, उनमें पूरी क्षमता है कि वे इंद्रियों द्वारा ग्रहण खेल लिए जाएंगे, लेकिन पांचों इंद्रियां जानने में समर्थ हैं, लेकिन एक समय एक ही करेंगे। हमें पांच बीमारियां हैं, पांच डॉक्टर हैं और वे सब हमारे इलाज करने में समर्थ हैं, लेकिन देखेगा तो एक ही एक, पांचों एक साथ तो नहीं देख सकते ना। देखा ना, एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। इसे ऐसा भी लिखा हो दे सकते कि क्षयोपशम ज्ञान में उसी प्रकार की शक्ति है, माने सशर्त शक्ति है। इंद्रियों की छायोपशमिक अंतरंग ज्ञात्री शक्ति कौए की पुतली के समान क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से एक ही साथ अनेक विषयों को जानने में असमर्थ है। आ गया ना कौए का उदाहरण। इसलिए द्रव्य इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी इंद्रियों के विषयों का समस्त ज्ञान एक साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और उसका केवल ज्ञान में एक साथ होता है। तो आपको अभी आगे पीछे हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कैसे नहीं पड़ता, पदार्थ अनंत है। यदि क्रम पड़ते ही तो फिर सबका ज्ञान होगा ही नहीं, भूतों का नंबर तो आएगा ही नहीं। इतनी भीड़ खड़ी ना पीछे, अब लगी लगी एक दुकान के सामने हजार ग्राहक खड़े हैं, कहते हैं एक साथ डॉक्टर नहीं देख सकता, एक एक को देखेगा डॉक्टर। तो ठीक है, हम एक एक को देख लेंगे कि भैया वो डॉक्टर दिन में 20 ही आदमी को देखता है और ये 2000 की लाइन लग रही है। इसलिए इसमें बहुत आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें देखेगा ही नहीं, अकेला इतना ही नहीं है कि क्रम से देखेगा। जिसमें क्रम पढ़ने की शक्ति है उसमें नहीं देखने वाली बात भी है, तो वो अनंत पदार्थों को जानेगा भी नहीं। वो परोक्ष ज्ञान जो क्रम से जानता है वो अनंत पदार्थों को जानेगा भी नहीं। देखो वस्तुतः बात यह है कि इंद्रिय, अजय मैंने लिखी है टिप्पणी, वस्तुतः बात यह है कि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, उसके जानने में बहुत सी मर्यादाएं हैं। एक तो वह अपने क्षयोपशम के अनुसार ही जान सकता है, दूसरे वह एक समय में एक इंद्रिय के विषय में ही प्रवृत्त होता है। यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि हम सभी इंद्रियों के विषयों को एक साथ जान रहे हैं, तथापि ऐसा होता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ कौए की आंख की पुतली का उदाहरण दिया है। कौए की आंखें दो होती हैं, किंतु पुतली उन दोनों आंखों में मिलाकर एक ही होती है। वह एक पुतली दोनों आंखों में आती जाती रहती है, उसका आना जाना इतनी शीघ्रता से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पुतली एक है या दो। इसी प्रकार इंद्रियों के विषयों में हमारा उपयोग इतनी शीघ्रता से घूमता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सभी इंद्रियों को से एक साथ जान रहे हैं। वस्तुतः होता यह है कि हम एक एक इंद्रियों के विषयों को क्रमशः ही प्रवृत्त होते हैं। परोक्ष भूत इंद्रिय ज्ञान एक प्रकार से पराधीन ज्ञान है। पराधीन अर्थात परोक्षम, यही व्याख्या की है ना, क्योंकि इसे प्रकाश आदि बाह्य सामग्री की सहयोग की भी आवश्यकता है। अब अकेली आंख और चश्मे ही थोड़ी चाहिए, उजेला भी चाहिए, है ना। इस कारण परोक्ष ज्ञानियों को विग्रता बनी ही रहती है। जानना सबको है और जानेंगे एक एक क्रम से, और बहुत सी चीजें बिना जाने ही रह जाएंगी, तो उसकी विग्रता कैसे खत्म हो सकती है। उपयोग चंचल और अस्थिर बना रहता है, अल्प शक्तिवान होने से वे खेद खिन्न भी होते रहते हैं, तथा पर पदार्थों को अपनी इच्छानुसार प्रणवाने के अभिप्राय से पद पद पर ठगाए जाते हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही है, इसी कारण हेय भी है। यानी यहाँ पर पूरी ताकत से उनने इस इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष ज्ञान है ऐसा कहकर उसे हेय सिद्ध किया, क्योंकि तुम प्रकट करने की अपेक्षा से उसे उपाधेय नहीं मान लो, उससे आत्मा जानना है, और उस अपेक्षा से वो कथनचित उपाधेय है, उस बात को भी हमें नहीं भूल जाना चाहिए। हो गया, समय भी हो गया।